नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
चौथा स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 32।
इंद्र उवाच। इदमप्यच्युत विश्वभावनम् वपुरानन्दकरं मनोदृशाम् सुरविद्वित्क्षपणैरुदायुधैर् भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः।
श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। राजा इंद्र ने कहा, हे भगवान, हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु प्रकट होता है और मन तथा नेत्रों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तात्पर्य, शास्त्रों से ज्ञात है कि भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, किंतु इस विशिष्ट यज्ञ स्थल पर वे अष्टभुज रूप में आए। राजा इंद्र ने कहा, यद्यपि हम आपके चतुर्भुज रूप देखने के अभ्यस्त हैं, किंतु आपका यह अष्टभुज रूप भी उतना ही यथार्थ है। जैसा कि ब्रह्मा कह चुके हैं, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना इंद्रियों की शक्ति के परे है। भगवान का असामान्य रूप, गुण तथा सौंदर्य सामान्य पुरुष द्वारा भी देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, जब वृंदावन में भगवान कृष्ण 6-7 वर्ष के बालक रूप में प्रकट हुए तो वहां के वासी उन्हें देखने आए। वहां पर मूसलधार वर्षा हुई तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की और पर्वत को 7 दिनों तक बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर उठाए रहे। यह असामान्य गुण भौतिकवादी पुरुषों को भी विश्वास दिलाने वाला है। भगवान की लीलाएं व्यावहारिक दृष्टि से भी मन भाने वाली हैं, किंतु निर्गुणवादी इस रूप पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे अपने ईश्वर से इसकी तुलना करते हैं। चूंकि इस भौतिक जगत के लोग पर्वत नहीं उठा सकते, अतः उन्हें विश्वास ही नहीं हो पाता कि भगवान ऐसा कर सकेंगे। वे श्रीमद् भागवत के कथन को रूपक मानते हैं और वे अपने ढंग से उसकी विवेचना करते हैं, किंतु तथ्य यह है कि भगवान ने वृंदावन के निवासियों के समक्ष पर्वत उठा लिया था, जैसा कि व्यासदेव तथा नारद जैसे आचार्यों तथा लेखकों ने पुष्टि की है। भगवान के कार्य, लीलाएं तथा असामान्य गुण, इन सबों को यावत रूप में स्वीकार करना होगा और इस तरह से हम आज भी भगवान को समझ सकते हैं। यहां दिए गए उदाहरण में इंद्र ने पुष्टि की है, आपका यह अष्टभुज रूप आपके चतुर्भुज रूप से के ही समान उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं यहां पर सारे देवतागण भगवान श्री विष्णु का गुणगान कर रहे हैं, सुंदर स्तुतियां अर्पण कर रहे हैं। पहले जब शिवजी वहां उपस्थित थे तो सारे देवताओं ने और दक्ष ने भी शिवजी की गुणगान की थी, और शिवजी को ही परम बतलाकर उनकी स्तुति की थी। लेकिन जब विष्णु वहां आ गए तो सभी लोग विष्णु को परम मानने लगे और शिवजी भी उनकी स्तुति करने लगे। तो कभी कभी जब हम किसी महान व्यक्ति की स्तुति करते हैं, विशेष करके ऐसे जब बड़े बड़े देवता होते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि शास्त्रों में उनको भगवान या प्रभु ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्थिति में कि वही व्यक्ति प्रभु या भगवान है। जैसे कभी कभी नारद जी को भी भगवान बताया जाता है, भगवान नारद, लेकिन वो भगवान नहीं है। लेकिन भगवान एक सम्मान करने के लिए उनको ये शब्द से संबोधित किया जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी शिव जी की स्तुति की थी, दक्ष ने भी की थी। ये हम इसी अध्याय में और पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जब वास्तव में जो भगवान है विष्णु, वो वहां जब उपस्थित हुए तो सारे देवी देवतागण, राजा दक्ष, ब्रह्मा जी और शिव जी भी खुद विष्णु के गुणगान करने लगे। आखिर में सभी जानते हैं कि विष्णु ही परम है और विष्णु की आराधना ही सबसे ऊंची है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। शिवजी ही खुद बताते हैं माता पार्वती को पुराणों में कि आराधना नाम सर्वेशाम, कि सारे आराधनाओं में सबसे परम विष्णुर आराधनम परम, कि विष्णु की आराधना ये सबसे ऊंची है परम। और विष्णु की आराधना से परे भी तस्मात परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, विष्णु से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, चीजें हैं, उनके सामग्री हैं, वो भी विष्णु से भी ज्यादा पूजनीय है। अर्थात विष्णु के भक्त, विष्णु का धाम, विष्णु का नाम इत्यादि। तो विष्णु और विष्णु के जो भी संबंधी हैं, शक्तियां हैं, सब साथ में चलते हैं। कृष्ण को कभी हमें अकेले नहीं पूजना चाहिए। कृष्ण मतलब कृष्ण और कृष्ण की शक्ति, जिस प्रकार से राजा मतलब राजा और उनकी प्रजा, राजा और उनका राज्य। अगर आप केवल राजा की उपासना करेंगे, राजा का गुणगान करेंगे, तो फिर ये पूर्ण नहीं होगा। पहले के जमाने में राजा को जगाने वाले संगीतकार हुआ करते थे। हर रोज सुबह अगर आप रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तो इसमें ये हम पढ़ते हैं कि जब भी राजा रात को विश्राम करते थे तो सुबह सुबह उनको जगाने के लिए विशेष ऐसे एक दल होता था संगीतकारों का, बहुत मधुर संगीत बजाया करते थे और फिर सुंदर सुंदर श्लोकों का उच्चारण भी करते थे, और भगवान के गुणगान के बाद में उस राजा का गुणगान करते थे कि राजा कितने महान हैं, किस प्रकार से उन्होंने चारों दिशाओं में सारे राज्यों को वश में कर लिया है, वो कितने वीर हैं, कितने विद्वान हैं, कितने दयालु हैं, कितने प्रजा की रक्षा करते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा गुणगान करते थे। ये प्रथा है, ऐसे राजा को जगाया करते थे। राजा दशरथ जब राज करते थे तो उस समय कितने विस्तार में वर्णन है कि ऐसे संगीतकार आके बाजा बजाते थे, कोई अलग अलग वाद बजाते थे। और बताया जाता है कि ये इनकी पीढ़ियां, ये वंश चलते आते थे ऐसे। वास्तव में ऐसे प्राचीन मंदिरों में ये प्रथा है। हम देखते हैं कि श्रीरंगम मंदिर में जहां रंगनाथ जी विराजमान है, वहां पर सारा जो श्रीरंगम का शहर है, पुराना शहर, वहां पुराना शहर मतलब सात दीवारों के भीतर वो मंदिर इतना विशाल है कि मंदिर ही नहीं, वो एक शहर हुआ करता था। और उसमें सात दीवारें हैं मंदिर की रक्षा के लिए, और सात दीवारों के भीतर सारे निवासी रहते थे। लेकिन अभी तो सात दीवारों के भी बाहर बहुत कुछ हो गया है, लेकिन उस जमाने में सात दीवारों के भीतर सारे लोग रहते थे। और सभी लोगों का जीवन भगवान से संबंधित होता था। रंगनाथ जी ही उनके जीवन के केंद्र हुआ करते थे। और कोई लोग पुजारी थे तो कोई लोग उनके लिए फूल बनाते थे, तो कोई लोग चौकीदारी का काम करते थे, कोई लोग विद्वान थे तो वो प्रवचन दिया करते थे। इस प्रकार से अनेक कार्य होते थे, और सारे जो वहां के निवासी थे किसी न किसी प्रकार से रंगनाथ जी की सेवा में लगे रहते थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो रंगनाथ जी की सेवा में नहीं लगा रहता था। छोटा सा बच्चा हो या वृद्ध कोई हो, सभी लोग। और ऐसे समाज में वो सब खुद भोजन भी नहीं पकाते थे। आज भी ऐसे परिवार है, हमने सुना, जॉइंट फैमिली है 50 लोगों की, जिनके घर में रसोई घर नहीं है, रंगनाथ जी का महाप्रसादी केवल खाते हैं। मतलब जो भी भगवान के लिए है वो प्रसाद के रूप में जो भी उनको मिलेगा वो खाते हैं। ऐसा नहीं कि घर में हम अपने लिए अपने पसंद की चीजें हैं वो बनाएंगे खाएंगे, नहीं। तो इस हद तक रंगनाथ जी उनके जीवन के केंद्र थे। आज भी अगर ऐसा है तो उस जमाने में कितना ऐसा हुआ होगा आप सोचिएगा। तो वहां पर जब हम गए थे तो हमने देखा कि वहां इतने सारे अनुष्ठान होते हैं, दैनिक अनुष्ठान होते हैं, साप्ताहिक अनुष्ठान होते हैं, और फिर जब विशेष उत्सव होते हैं उस समय तो पालकी उत्सव में भगवान को बाहर लिया जाता है पालकी में, और फिर ऐसे कई भक्त होते हैं, उनके सेवक होते हैं जो अलग अलग वाद ये जो है बजाते हैं। कोई शहनाई बजाता है, और शहनाई बजाने वालों की पीढ़ियां हैं, वंशों से चलते आ रहे हैं। बाप बेटे को सिखाता है शहनाई बजाने के लिए, और ऐसे पीढ़ियां बीतती जाती हैं। रंगनाथ जी की सेवा में वो शहनाई बजाते आए हैं उनकी पीढ़ियां। और ऐसे कोई वायोलिन बजाते हैं, कोई मृदंगम उनके स्टाइल में जो मृदंग होता है मृदंगम बजाते हैं। पीढ़ियों की पीढ़ियां ऐसे हजारों सालों से चलते आ रही है प्रथा। और जब भगवान उठते हैं सुबह को तो ये सब जाके भगवान को उठाते हैं, जगाते हैं, बहुत मधुर रूप से शहनाई बजाते हैं, कोई उनकी स्तुतियां गाते हैं, वेदों के पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और दोपहर के समय भी जब भगवान फिर से निद्रा से उठ जाते हैं, फिर से ऐसे होता है। तो भगवान की तरह राजा को भी सम्मान दिया जाता था, क्योंकि राजा जो है नरदेव है, भगवान का प्रतिनिधि होता है पृथ्वी लोक के ऊपर। और उस जमाने में राजा भी तो वैदिक जमाने में एक प्रामाणिक राजा हुआ करते थे, भक्त भी हुआ करते थे, राज ऋषि। और अगर इतने बड़े भक्त भी नहीं थे, भौतिक दृष्टि से भी उनके गुण इतने महान होते थे कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है लोग उनकी स्तुति करते रहते थे। और विशेष करके जो सूर्यवंश और चंद्रवंश के महान राज ऋषि हुए हैं उनका तो कहना ही क्या है, इतने उनके एक महान गुण थे, तो पूजनीय है सबके लिए। तो ऐसे राजाओं के लिए भी ऐसे स्तुति गाया करते थे, तो राजा दशरथ के लिए हुआ करता था। और जब राजा दशरथ ने उनका देहांत तो हो गया, और क्योंकि राम जी और सीता लक्ष्मण वनवास में चले गए, तो उस समय जब भरत जो कि अपने मामा के घर में थे, भरत शत्रुघ्न के साथ मामा के घर में थे, उनको बुलाया गया। वशिष्ठ मुनि ने ये संदेश भेजा कि कोई जरूरी काम है, लौट कर आना। सही कारण नहीं बताया उस समय, तो राजा भरत चले आए वहां पर शत्रुघ्न के साथ में। और उस समय कैके ने उनको बताया कि ऐसे बात है कि अभी तुम राजा बनोगे, तैयारी करो। तो भरत ये सुनकर तो हैरान हो गए और माँ को बहुत कोसा और कहा, मैं स्वीकार नहीं करता, वहां से तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझे शर्म आता है कि ऐसे माँ ने मुझे जन्म दिया है। बहुत क्रोधित हो गए भरत, और एक राजा का सम्मान ही भरत को मिलने लगा। और उस समय जब वो सोए होते थे तो यही जो संगीतकार वगैरह हैं वाद बजाकर उनको भी जगाने लगे, तो उसे भरत उठकर कहा कि ये मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं, मैं राजा नहीं हूं, राम ही राजा है अयोध्या के, अयोध्यापति तो केवल राम है, मैं नहीं हूं, इसलिए मेरे लिए ये स्तुतियां वगैरह नहीं गाओ, ऐसे मत करना। तो उन्होंने उनको मना कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो प्रथा चलती आती है स्तुति करने की, किसी महान व्यक्ति की स्तुति करते हैं, ये एक अच्छी बात है। दूसरों की स्तुति करने से हमारा भी भला होता है वास्तव में, और विशेष करके जब वो व्यक्ति योग्य होता है। लेकिन जिसकी स्तुति की जाती है वो भी योग्य होना चाहिए, ये बड़ी बात है। उसकी पचन शक्ति होनी चाहिए, पचन के बाहर उसकी स्तुति हो गई तो फिर क्या होगा, अपचन की वजह से बहुत कठिनाई होती है। जब हम बहुत खाते हैं और पचन नहीं होता तो पेट फूल जाता है, ज्यादा खाने से पेट बड़ा हो जाता है। लेकिन जब स्तुति पचन नहीं होती तो क्या होता है, क्या बड़ा हो जाता है, अभिमान, सर बड़ा हो जाता है, सर फूल जाता है। तो इस प्रकार से उस जमाने के राजा भी इस योग्य थे कि ऐसे स्तुति को वो पचन कर सकते थे। इसलिए ऐसे राजा महाराजा थे, उनके अंदर भी वो शान थी, वो एक क्या कहते हैं, वो एक ऐसे गुण थे जिससे वो ऐसे राज संभाल भी सकते थे। तो इस प्रकार से जब राजा महाराजाओं के लिए ऐसी स्तुति होती थी तो फिर शिवजी के लिए कितना, देवी देवताओं के लिए कितना होना चाहिए। और देवी देवताओं से में सबसे महान है शिवजी, जिनका नाम महादेव है, देव नहीं महादेव। और शिवजी की जब स्तुति इतनी होती है, वे खुद भगवान चले आए, तो उनकी स्थिति कितनी और होनी चाहिए। तो विष्णु जब यहां खुद प्रकट हुए यज्ञ का फल स्वीकार करने के लिए, साक्षात विष्णु आए, तो स्वाभाविक है कि सारे देवी देवताओं ने उनके सुंदर सुंदर स्तुतियां अर्पण करने लगे सारे, और एक से बढ़कर एक सब सुंदर चीजें कहने लगे। और यहां पर विशेष बात जो बताई जाती है श्लोक में कि श्री विष्णु यहां अष्टभुज रूप में प्रकट हुए, जो कि साधारणतः दिखाई नहीं पड़ता है। आपने अष्टभुजाओं वाले कोई विष्णु के रूप देखे हैं, बहुत कम ऐसे दिखाई पड़ते हैं। विष्णु मतलब चतुर्भुज और कृष्ण मतलब दो भुजाओं वाले, लेकिन अष्टभुज कम है, ऐसे देखने में नहीं आता ज्यादा। लेकिन भगवान के लिए दो हो या चार हाथ, चार भुजाएं हो, आठ हो, 16 हो, 1 करोड़ हो, भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान अगर चाहे तो कितने भी हाथ लगा सकते हैं अपने आप को, पौंड्रक जैसे नहीं। पौंड्रक नाम का एक राजा था जब कृष्ण द्वारका में राज करते थे, और ये पौंड्रक बहुत अभिमानी घमंडी व्यक्ति था, और घमंडी नहीं, इतना भ्रम में था कि खुद को वासुदेव समझता था कि मैं कृष्ण हूं, और ये जो द्वारका में तथाकथित वासुदेव है ये झूठा वासुदेव है, तो मैं उसको झूठा साबित करके ही रहूंगा। तो पौंड्रक ने वासुदेव के सारे चिन्ह ग्रहण किए, जैसे मुकुट है, पीताम्बर है, मोर पंख है, और फिर चार भुजाएं भी दो एक हाथ लगा दिए, जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चे लगाते हैं ना, तो जो झूठे हाथ लगा दिए, ये तो पौंड्रक चार हाथ कहां से लाते, दो हाथ तो थे भगवान ने दिए हैं, लेकिन बाकी दो हाथ कहां से लाते, तो दो हाथ उनको जोड़ने पड़े, और जोड़कर फिर एक वो सुदर्शन शंख चक्र गदा पद्म भी धारण किया, और उन्होंने संदेश भेजा कृष्ण को अपने दूत के माध्यम से कि तुम झूठे कृष्ण हो और मेरे शरण में आ जाओ, अभी भी समय है, और अगर ये मूर्खता और करते रहोगे तो मुझे आकर तुम्हें खुद खत्म करना पड़ेगा। तो अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी भी समय है, मेरे शरण में आ जाओ। तो द्वारका के भरी सभा में कृष्ण वहां सबके साथ में बैठे थे, उग्रसेन थे और उद्धव थे, बाकी जो भी उनके अनुयायी हैं सब वहां थे। तो जब भरी सभा में दूत ने ऐसे घोषणा की, राजा पौंड्रक की के संदेश को पढ़ा, तो सभी लोग जोर से हंसने लगे और ऐसे हंसे हंसे कि हंसी बंद ही नहीं हुई, और सबसे ज्यादा कृष्ण हंस रहे थे। हंसते 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 थक गए, क्योंकि इतना उनको ये सब मजेदार लगी ये बात, हंसने लगे। और फिर जब हंसी बंद हो गई मुश्किल से, तो उन्होंने उस दूत से कहा, ये संदेश ले जाओ तुम्हारे प्रभु के पास, कहो कि हे पौंड्रक, तुम तो सबसे बड़ा मूर्ख हो, और इतने बड़ा मूर्ख हो कि तुम्हारी मृत्यु को तुम पुकार रहे हो, इसलिए बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें आके खत्म करने वाला हूं। और इस प्रकार से कृष्ण ने भी बड़ा संदेश भेज दिया, और दूत ने वापस जाकर पौंड्रक को यह संदेश दिया। तो पौंड्रक बड़े क्रोधित हो गए कि अरे कृष्ण की ये मजाल, ये मेरे साथ में इस प्रकार से बातें करते हैं। तो युद्ध में ललकारने लगे कि चलो अभी युद्ध में ही देखना पड़ेगा। अपनी सेना लेकर द्वारका के बाहर आए वो, और अपने शंख बजाने लगे, जिसका नाम उन्होंने पांचजन्य रखा था, पांचजन्य कृष्ण का है, झूठा पांचजन्य था वो। तो उस समय कृष्ण भी बाहर आए, हंसते हंसते बाहर आए, और वो भी सामना हुआ और युद्ध में ललकारने लगे उनको। क्षत्रियों का ये प्रथा है, जब युद्ध में आमने सामने आते हैं तो एक दूसरों को ललकारते हैं। ये ललकारना क्यों होता है? ललकारने से क्या है कि खुद भी जोश आ जाता है लड़ाई के लिए, और दूसरे वाला भी क्रोधित हो जाता है, और जब वो क्रोधित हो जाता है तो वो भी कुछ उल्टी पुल्टी बातें बोल देता है, तो उसकी बातें सुनकर, उसकी निंदा सुनकर उसको और भी क्रोध आ जाता है, जोश आ जाता है, और युद्ध करने के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। महाभारत में हम ये बहुत पढ़ते हैं और भागवत में भी पढ़ते हैं। भीम और दुर्योधन जब युद्ध करते थे, एक दूसरे गधा युद्ध कर रहे थे, क्या एक दूसरे को ललकारते थे। इंद्र और वृत्रासुर भागवत में एक दूसरे को कैसे ललकार रहे थे। तो एक प्रथा है, उसी प्रकार से पौंड्रक और कृष्ण भी एक दूसरे को, पौंड्रक विशेष करके, ललकारने लगे। और समय कृष्ण जब पास में आए और उन्होंने देखा कि अरे इसने दो झूठे हाथ लगाए हुए हैं, और शंख चक्र गदा पद्म है, और मोर पंख है, तो और भी युद्ध भूमि पर हंसने लगे। युद्ध भूमि तो हंसने की जगह नहीं है ना, वो तो युद्ध करने की जगह है, लेकिन वहां कृष्ण तो हंसते जा रहे हैं। और उसके बाद में युद्ध हुआ, और आसानी से भगवान कृष्ण ने पौंड्रक का सर काट दिया। तो पौंड्रक जैसे व्यक्तियों को, या कोई भी साधारण व्यक्ति को, दो ज्यादा हाथ लगाने में इस फैंसी ड्रेस करना पड़ता है, लेकिन भगवान विष्णु ऐसे नहीं है। भगवान विष्णु जो चाहे वैसे अपने आप से कर सकते हैं, वे स्वराट है, सारे शक्तियां उनके अंदर है। कहीं विष्णु आठ भुजाओं वाले होते हैं, कहीं चार, कहीं दो कृष्ण के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के लिए कोई सीमा नहीं है ऐसे कार्यों के लिए। तो यहां पर जब अष्टभुज रूप में विष्णु प्रकट हुए, तो इंद्र भी कहने लगे कि ये भी आपका रूप इतना सुंदर है, और दो हाथ दो भुजाओं वाले रूप के समान ही है, ये इतनी ही शक्ति है, ये चार भुजाओं वाले रूप के समान ही है ये, और ये रूप इतना सुंदर है आपका कि मन और हमारे नेत्रों के लिए बहुत ही अभिराम, बहुत ही एक आनंददायी है, और इसी रूप में आप देवताओं को दंड, असुरों को दंड देने के लिए आप आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि कृष्ण कभी भी असुरों को वध नहीं करते। कौन करते हैं? हाँ, विष्णु करते हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कृष्ण का काम केवल एक है, वो क्या है? एंजॉय करना गोलोक धाम में, है ना? वो जाकर वहां बांसुरी बजाते हैं, गायों को चराते हैं, गोपियों के साथ में रासलीला करते हैं, अपने माता यशोदा और पिता नंद बाबा की सेवा करते हैं और सारे ब्रजवासियों को आनंद देते हैं, उनका यही काम है। और जब वो अवतरण होते हैं यहाँ पर भौतिक जगत में, तब भी वो वही कार्य करते हैं वृंदावन में। तो वृंदावन में जो अन्य कार्य दिखाई पड़ते हैं या वृंदावन के बाहर भी जो कार्य दिखाई पड़ते हैं, वो श्याम सुंदर कृष्ण के कार्य नहीं होते हैं। जैसे वृंदावन में भी कृष्ण ने असुरों का कितने सारे असुरों का वध किया, लेकिन वास्तव में हालांकि वो कृष्ण थे, लेकिन फिर भी वो कृष्ण नहीं थे। क्यों? क्योंकि सारे जो अवतार हैं, विष्णु तत्व हैं, सारे कृष्ण के शरीर में सम्मिलित होते हैं जब कृष्ण आते हैं तो, क्योंकि ये सारे जो अवतार कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। एते चांस कलहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। जो अलग अलग अवतार है, विष्णु तत्व है, वो भगवान कृष्ण के अंश हैं या तो अंशों के अंश, इनको कला कहते हैं, ये कला है। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। और इंद्रारि व्याकुलम लोकम, जब इंद्र अर्थात देव, देवों के आरी अर्थात उनके जो शत्रु या कोई उधम मचाते हैं, उत्पाद करते हैं कहीं देवलोकों में, तो क्या करते हैं? संभवामी युगे युगे, तो फिर वो युग युग में अवतार लेते हैं भगवान या उनके अवतार। तो सारे जो विष्णु तत्व हैं वो भगवान श्री कृष्ण में हमेशा रहते हैं। और जब भी श्री कृष्ण स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण आते हैं, तो उनके भीतर ही सारे विष्णु रहते हैं। और जो उनका कार्य है, कृष्ण का कार्य, वो करते हैं खुद बांसुरी बजाना इत्यादि। लेकिन जब असुरों का वध करने का समय आ जाता है, तो उनके भीतर जो विष्णु हैं, ये कार्य को संपन्न करते हैं। इसलिए ये वृंदावन में रहते हुए भी ये असुरों का वध करने का कार्य विष्णु ने किया है। ये लीला जो है, ये भगवान के धाम में नहीं देखी जाती, क्योंकि भगवान में के धाम में असुर कौन हो सकता है? भगवान के धाम में तो असुर नहीं होते हैं। तो इससे मतलब हम समझ सकते हैं कि भौतिक संसार भी भगवान की लीला के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भगवान वहां ऐसे वीर रस का आस्वादन इतना नहीं कर सकते, इसलिए भौतिक जगत में उनको आना पड़ता है। इसलिए भौतिक जगत भी भगवान का एक लीला स्थल है। देखिए कितनी सुंदर बात है कि ऐसा नहीं है कि भगवान अपने धाम से ही संतुष्ट होते हैं, वो तो हैं पूरी तरह से, लेकिन फिर भी भौतिक जगत में आकर वो ऐसी लीलाएं भी कर सकते हैं जो कि वो खुद अपने धाम में नहीं करते हैं। क्योंकि गोलोक धाम में तो वो असुरों का वध नहीं कर सकते, असुर तो सारे यहां पर होते हैं। भले ही वो भगवान के भक्त वहां से आकर यहां लीला क्यों ना करें, लेकिन यहां आकर उनका वध करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से यहां इंद्र उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि आपका ये जो विष्णु स्वरूप है, अष्टभुजाएं वाला रूप है, ये हमेशा असुरों को दंड देने के लिए, उनको खत्म करने के लिए सदा तत्पर रहता है। तो ये जो कार है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, ये कार्य विष्णु का होता है। और ये कार्य संपन्न करने के लिए विष्णु प्रकट होते हैं, और यज्ञ से जो फल स्वीकार करते हैं वो भी विष्णु है, वो कृष्ण नहीं आते, विष्णु ही आते हैं। कृष्ण विष्णु के रूप में आते हैं, क्योंकि ये जो अग्नि है ये विष्णु की का जिह्वा माना जाता है, कृष्ण का नहीं। इसलिए विष्णु आकर यज्ञ में सारा फल स्वीकार करते हैं, और सारे देवी देवताओं को और यजमान जो होते हैं उनको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान के लिए ऐसे अष्टभुज धारण करना या ऐसे अद्भुत कार्य करना उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो गोवर्धन पर्वत धारण करने जैसी लीलाएं हैं, ऐसे लीलाओं को पढ़ने से जो नास्तिक लोग हैं उनको भी श्रद्धा आनी चाहिए, ऐसे प्रभुपाद बता रहे हैं। तो कई लोग हैं जो नास्तिक होते हुए भी वृंदावन ये गोवर्धन लीला में विश्वास नहीं करते, इसका मतलब क्या है? कि वो नास्तिक से भी और नीचे गिरे हुए लोग हैं, क्योंकि इतना उनका पतन हो गया है कि ऐसे लीला पढ़ने से भी भगवान में उनको विश्वास नहीं आता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें एक ऐसा मौका दिया है जिसमें हम आकर उनके लीलाओं के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके धाम के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ये अहोभाग्य है हमारा, इसलिए इस भाग्य का सदुपयोग करना चाहिए। रोज ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और प्रवचन ज्यादा से ज्यादा सत्संग में आना चाहिए। ऐसा करने से और ऐसी स्तुतियां, सुंदर सुंदर स्तुतियां अर्पण करने से हमारे हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रकट होगा धीरे धीरे से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? ये रोज हम इनका पाठ करते हैं, हृदय का शुद्धिकरण होता है, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। भी हमें बाहर वालों की भी स्तुति करनी पड़ती है अपने काम के लिए, क्या ये ठीक है या नहीं, ये प्रश्न है। तो किस काम के लिए बाहर वालों की स्तुति करनी पड़ती है? भौतिक काम या आध्यात्मिक काम? भौतिक काम के लिए। भौतिक काम के लिए भी अगर दूसरों की स्तुति करनी पड़े अपने व्यवसाय के लिए, अगर दाल रोटी के लिए थोड़ा बहुत करना पड़े और स्तुति न करने से दाल रोटी नहीं मिले, तो फिर थोड़ा बहुत करने से ठीक है, लेकिन फिर भी इसको इतना बढ़ाइए मत, कम से कम रखिए, जितना कम से कम हो। लेकिन अगर ऐसे स्तुति बिना भी जितना हो सकता है उतना अच्छा है। लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए अगर किसी को किसी की स्तुति करनी पड़े तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी सीमा में। ऐसा नहीं कि किसी से दान लेने जाएं और ऐसे स्तुति करते रहें जैसे यहां पर बताया हुआ है शास्त्र में, भागवत में, तो भगा ही देंगे हमको, वो भी सहन नहीं कर पाएंगे। तो स्तुतियां भी करनी है तो केवल जितना बिल्कुल आवश्यक है उतना ही कम से कम। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि कृष्ण की सेवा के लिए हमें अलग अलग घमंडी व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है, उनकी तारीफ करनी पड़ती है, आप इतने महान हैं, आप इतने बड़े दानी हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो हमारी भी मदद आप कीजिए। तो थोड़े उनको अच्छा लगता है, अच्छा देखकर उनको हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उनकी सेवा में लग जाना चाहिए, ऐसे नहीं है। हमेशा ये समझना चाहिए कि